تفسیر دیکھیں گے.
یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو, باپ دادا کا نام لے کر خود کو رسوا نہ کرو, خود کو غلطیوں پہ نہ لے جاؤ, خود ایسے کام کر کے کہ جو ماں باپ کرتے تھے اور تم کو کہ چونکہ وہ بھی کرتے تھے تو اب میں بھی کروں, ایسا نہ کرو, اپنی فکر کرو. باقی رہ گئے دوسرے لوگ, تو لا یدرکم من ضل اذا اہتدیتم, تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ شخص جو گمراہ ہے, شرط کیا ہے کہ تم خود ہدایت پہ رہو. تم ہدایت پہ آ جاؤ تو بڑے سے بڑا بھٹکا ہوا شخص جو ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. باقی رہ گئی بات کیا صحیح ہے کیا غلط, تمہیں تو پتہ چل گیا, ان کو نہیں پتہ. کب پتہ چلے گا؟ اللہ مرجیوکم جمیعا, اللہ کی طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے, سب آؤ گے. پھر فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ تم کو خبر دے گا جو تم عمل کرتے تھے. یہ آیت دو ایکسٹریم رویوں کی وجہ سے مس انٹرپریٹ ہوتی ہے, اس کو بھی دیکھیں گے اور ساتھ اپنی بھی دیکھیں گے. مختصر سی بات ہے, کچھ لوگ اس آیت کو لے کر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی اپنی فکر کرو, دوسروں کی فکر نہ کرو. جی تم اپنی فکر کرو, میری نہ کرو. لوگوں سے یہ جملہ سنتے کہ بھائی تم مجھے نہ کہو, جو میں کر رہی ہوں مجھے کرنے دو, دوسروں کو چھوڑ دو. اور کہتے ہیں کہ جی تم اپنی بھلی نہ بیڑو, اپنے لفظوں میں. کچھ لوگ کہتے ہیں تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں, لوگوں کو کچھ نہ کہو, کوئی دین کی دعوت نہ دو, کیونکہ ہر ایک کو پتہ ہے. تو ان کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کا میں ایک کال پڑھ کے سناتی ہوں. انہوں نے کہا, ایک روز خطبہ دیا, کھڑے ہوئے, حمد و ثنا کے بعد فرمایا, تم یہ آیت یعنی علیکم انفسکم پڑھتے ہو, یعنی تم پر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے, اور اس کا غلط مفہوم ذہن میں رکھتے ہو. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان الناس اذا راؤ المنکر, کہ جب لوگ برائی کو دیکھیں اور اس کو درست نہ کریں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے. بات واضح, یہ اس کا مفہوم لینا کہ دوسروں کو نہ منع کرو, خود سے ہی عمل کرتے رہو, بالکل نہیں ہے. دوسری طرف اس آیت کو اس طرح مس انٹرپریٹ کرتے ہیں یا لوگ سمجھتے ہیں, اپنے گناہوں کا خمیازہ دوسروں کے سر پہ ڈالتے ہیں. شوہر ہی نہیں پسند کرتے, ساس کو غصہ آ جاتا ہے, میرے بچے مجھے مس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے تلواریں نہ چلاؤ. یقین کریں یہ آیت اس مفہوم میں آتی ہے کہ تم اپنی گمراہیوں, اپنی سستیوں, اپنی غلط فہمیوں, اپنے ڈس آرگنائز ہونے کا الزام اپنے گھر والوں پہ مت لگاؤ. جو جتنا کوشش کرے گا اللہ اتنی توفیق دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ اللہ کے دین کی طرف آئے اور اللہ والے اس سے ناراض ہوں؟ ہم دین کی طرف آتے ہیں, ہم اپنا حال حلیہ بدلتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں سوری سوری پیچھے ہو جاؤ, لوگ برا مانیں گے. کہا نہیں, لا یدرکم من ضل, بگڑے سے بگڑا ہوا شوہر بھی بیوی کے لباس اور حجاب پہ ذرا تنقید نہیں کر سکتا, شرط کہہ کہ پہلے تم بھی اپنے دل سے سچی ہو کہ زخت دئی تم, میں نے سوچ لیا کہ مجھے ایسے کرنا ہے. ہم چار بال بھی مرد کی مرضی کے بغیر کہتے ہیں نہیں پلکنگ کرنی ہے کیونکہ مرد منع کرتے ہیں, مند مردوں کی خوشی ہے, اپنے گناہوں کو اپنے سر پہ لو. یہ پچھلی آیت کے اوپر کمنٹ ہے. باپ دادا کا نام لے کے غلط کام کرتے ہو تو کیا تم باپ دادا کے نام پہ باقی سارے کام کرتے ہو؟ کیا ہم سب اپنے باپ دادا کے دور کا ہر فیشن کر رہے ہیں؟ جیسے آپ کی دادی کی شادی ہوئی تو خیر سے ایسے ہی آپ کی پوتی کی شادی ہو رہی ہے, وہ غرارہ سیٹ جو دادی نے اپنی شادی پہ پہننا تھا کہ آج کی دلہن کا ویڈنگ ڈریس ویسے ہی ہے, جو چھپر کھٹ اور جو صوفے کرسیاں دادی کے وقت کے تھے کیا وہی آج آپ کے گھر میں ہیں؟ وہ تو ہم نے سب نکال دیا, دین نہیں نکالتے, باپ دادا کی بات ہے. پھر ایک اور بہت بڑا شبہ اس میں آ جاتا ہے, جی فلاں تو یہ کر رہا ہے, کیونکہ اب دیکھیں نا ہم نے یہ جو باتیں پڑھی, اب اسی پہ اگر آپ دیکھیں آپ کہتے ہیں جی فلاں اخبار میں آرٹیکل آیا, وہاں تو اتنے فسائل لکھے ہوئے تھے شب برات کے اور اس کے, آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے, اور فلاں ٹی وی پہ فلاں کے کہہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی کے اوپر نظریں کیوں لگاتے ہو؟ تم اپنی غلطیوں کے الزام بیچارے مولویوں کو کیوں دیتے ہو؟ کیا مولویوں کے کہنوں پہ تم نے باقی کام کر لیے؟ مولویوں کے کہنے پہ سو چھوڑ دیا, بے حیائی چھوڑ دی؟ نہیں چھوڑی. تو پھر جو کام تم نے کرنا ہوتا ہے وہی کرنے لگتے ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ تم اپنی فکر خود کرو. तुम्हारे माँ बाप नहीं पहुँच चुकी बात, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनको माफ़ करे, तुम उनके लिए दुआ करो, अच्छे सदकाचार्य बनो, कहो कि अल्लाह मेरी माँ बड़ी भोली थी, किसी स्कूल नहीं गई, किसी मदरसे में नहीं गई, बचपन से उनको घरदारी में डाल दिया गया, अब तूने मुझे तौफीक दी, अब मैं भी अच्छे काम करूँ तो उनको भी इसका अजर दे, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। और अगर उनका नाम लेके गलत काम करते रहेंगे तो कल क़यामत के दिन कोई हमारे काम नहीं आएगा। ला यालमूना शैया, इल्म नहीं जानते, नहीं पता नहीं चलता इनको कि ये सारी बातें क्या है। यकीन करें ये इतना अहम टॉपिक है कि अगर इस पे गौर करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो आप देखिए कि जब इस आयत को हम गौर से देखते हैं ना तो इसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों से अल्लाह ताला ने हमें एक बीच का रास्ता दिया। अगर इस आयत को हम बिल्कुल सिंपल मानों में समझें तो इसका मानी क्या बनता है कि जब तुम लोगों को बात कह चुको फिर वो तुम्हारी बात ना माने तो फिर उनकी फ़िक्र ना करो। बात पहुंचानी है लेकिन कहने के बावजूद कोई ना माने, बुलाने के बावजूद कोई ना आए, आपकी कोशिशों के बावजूद लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं होता दिख रहा, तो फिर इंजाम अल्लाह ताला पे छोड़ दें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को बुराई से रोकना ही छोड़ दें, क्योंकि वरना तो फिर पूरे का पूरा दीन जो तबलीग और दीन की बात आगे पहुंचाने के बारे में वो बेकार हो जाएगा ना। बाज़ लोगों ने सिर्फ इस एक आयत को बुनियाद बना के कहा कि भाई अपनी फ़िक्र करो, अपनी निभाओ जी, दूसरों की बातें उनकी उनके ऊपर छोड़ दो, तो फिर वो जो बात अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को कही थी कि कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, उसका क्या होगा? यामरून बिल मारूफ और जनहौना अनिल मुनकर, तो ये पूरे का पूरा टॉपिक ही फिर हमें निकालना पड़ता है। तो ज़रूरत है इस बात की कि जब कोई किसी को कुछ कह दे फिर उसके बाद कोई ना माने तो फिक्र ना करो। इसके बारे में एक बहुत ही खूबसूरत कॉल सईद इब्ने जुबैर है, तो वो कहते हैं कि तुम अपने शरई वाजिबात को अदा करते रहो, यानी जो भी तुम्हें काम अल्लाह ने करने को कहा है, तुम्हारे जो ज़िम्मे खर्चे हैं, जो अदायगी है, यानी जो भी वाजिब चीज़ें हैं शरीयत की, उसको करते रहो, जिनमें जिहाद और अमर बिल मारूफ भी दाखिल है। ये सब कुछ करने के बाद जो लोग गुमराह रहें तो फिर तुम पर कोई नुकसान नहीं, शर्त क्या है कि ज़ख्त दई तुम। तो इसी को आप अपने घर में अपने बच्चों और अपने मामले पे भी ले सकते हैं, और इसी को फिर आप एक ओवरऑल पूरे मुआशरे के हिसाब से भी देख सकते हैं कि इसमें हमारी ज़िम्मेदारी कितनी ज़्यादा है। और इसी से ये भी पता चल जाता है कि जब कोई बंदा पूरे इखलास के साथ कोई कोशिश करता है फिर उसके बाद अगर उसकी कोशिश के नतीजे में कोई एक बंदा फ़ायदा पा ले या 100 पा लें, इसका बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क दूसरी चीज़ों पर नहीं पड़ता। अल्लाह ताला जो है वो क्वांटिटी नहीं देखता बल्कि वो इंसान की कोशिश देखता है, किस दर्जे की कोशिश थी, किस तरीके से की, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से मदद कितनी मांगी। हाँ, काम करने का तरीक़ेकार अल्लाह ताला से पूछना चाहिए, ये नहीं कि आप काम करें बहुत बेढंगे तरीके से फिर आप कहें जी कि अल्लाह को की मर्ज़ी होगी तो इससे फ़ायदा होगा। नहीं, बाज़ दफ़ा बड़े मुखलिस लोग होते हैं लेकिन काम ठीक तरीके से ना कर सकने की वजह से वो लोग उस काम का सही फ़ायदा ना दूसरों को दे पाते हैं ना उनको ख़ुद कोई फ़ायदा होता है। तो अब आगे चलते हैं, बहुत ही समझने वाली आयत है, यानी अल्फाज और मानी के अतबार से मुश्किल आयतों में से है लेकिन बिल्कुल आसान है। इसकी शान नज़ूल बता देती हूँ, आयत 106 और उसके अगली कुछ आयात, तो इंशाल्लाह बात जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक वक्त आया था, एक ऐसा मामला आया कि एक शख्स था जिसका नाम था बुदैल, ये मुसलमान था। दो लोग जिनमें से एक का नाम तमीम और दूसरे का नाम अदी था, इनके साथ मिलकर सफ़र में था, यानी तीनों मिलके सीरिया गए, जैसे लोग जाते हैं कारोबार के लिए, तिजारत के लिए या कुछ। अब हुआ क्या कि वहाँ जाके ये जो मुसलमान था ये बीमार हो गया, और इस तरह का बीमार हुआ कि लगा कि अब इसकी ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए। सफ़र में इंसान के पास पैसा भी होता है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी होती हैं। इसने क्या किया कि अपने सामान की एक लिस्ट बनाई और अपने सामान के नीचे छुपा दी, और अपने इन दोस्तों को कहा कि जब तुम वापस जाओगे अपने वतन तो ये मेरा सामान मेरे घर वालों को दे देना। जो इसके साथी थे उनको नहीं पता था कि सामान की लिस्ट भी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हम दे देंगे। फिर क्या हुआ कि वो बुदैल फौत हो गए। उसके बाद वो दोनों साथी जब वापस आए, उन्होंने सामान वापस करने से पहले सामान को देखा तो उसमें एक बहुत कीमती प्याला था जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ था, नक्शो निगार थे, कीमती था। उनको अच्छा लगा, कहा किसी को क्या पता चलेगा, वो तो मरी गया। क्योंकि बज़ दफ़ा जब कोई मर जाता है तो लोग उसी की गवाही डालते हैं कि ना वो वापस आएगा, ना बताएगा, ना कुछ हमें इसका नुकसान होगा। चुनाचे उन्होंने वो प्याला दे दिया। घर में आके उसके घर वालों को बता दिया कि ये आपके फलां शख्स की चीज़ें हैं। घर वालों ने ले ली। जब घर वालों ने सामान खोला तो उसमें फहरिस्त निकली, लिस्ट थी जो। उन्होंने कहा चलो देख लेते हैं कि कितना है क्या है। जब वो लिस्ट देखी तो उसमें पता चला कि चीज़ें मिस हैं, वो एक प्याला नहीं था। अब उन्होंने ये मामला देखा कि समा और प्याला भी चूँकि कीमती था, और चीज़ छोटी हो या बड़ी, बहरहाल उनकी वारसों की वो चीज़ थी। मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया कि क्या तरीका हा किया जाए। और मुकदमा जब दर्ज किया गया, इसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बुलाया। और जो मामला हुआ इसको अब हम आयतों की रोशनी में देखते हैं कि जब किसी के ऊपर शक हो जाए कि उसने वसीयत में तब्दीली कर ली है, उस तरह जो बात थी उसको बदल दिया है, तो फिर उसके लिए क्या तरीक़ेकार किया जाएगा। आप इन आयात का टॉपिक ये लिख सकते हैं कि सफ़र के अंदर जब किसी पर मौत के असरात शुरू हो जाएं। और इन आयतों को पढ़ते हुए ख़ास तौर पे मुझे ये खौफ आता है क्योंकि यहाँ बात हो रही है नॉन मुस्लिम लोगों के बीच में रहने की, कि जब कोई सफ़र में हो और नॉन मुस्लिम लोग उसके इर्द गिर्द हैं, मुस्लिम भी नहीं है पास, तो फिर वो क्या करे, उसकी इंशाल्लाह ताला रहनुमाई आयतों से हमें मिलती है। और साथ ही साथ आप देख लीजिए कि इससे इस्लाम की खूबसूरती भी पता चलता है कि कोई ऐसा मामला नहीं रह जाता ज़िंदगी का कि जिसके बारे में फिर अल्लाह ताला ने रहनुमाई ना की हो। तो आइए देखते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ईमान की पुकार, शहादतु बैनिकुम इज़ा हदर अहदकुमुल मौत हीन अलवसीयत इस्नानी ज़वा अदलिन मिनकुम, गवाह दरमियान तुम्हारे जबकि पहुँचे तुम में से किसी को मौत, वसीयत के वक्त दो मोतबर शख्स गवाह होने चाहिए, और औ यानी ये दो नहीं है ज़वातलिन मिनकुम, तो औ आखरानी मिन गैरिकुम, तो फिर दो दूसरे गवाह बना लो जो तुम में से ना हो। मुराद ये है कि पहली कोशिश ये करो कि मुसलमान गवाह बने, मुसलमानों में से कोई तुम्हें मिल जाए, क्योंकि बहरहाल इस्लाम वाले की बात की ज़्यादा सच्चाई हो सकती है, उसका यकीन किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद अगर वो ना हो तो फिर नॉन मुस्लिम को भी बना सकते हो। इससे क्या पता चलता है कि आम हालात में गवाही के अंदर तो मुसलमान ही को अहमियत दी जाएगी, लेकिन हालात के तहत अगर किसी वक्त कोई मुसलमान उस जगह ना मिले तो फिर उसकी जगह पे दूसरों को बनाया जा सकता है। इससे आपको इस्लाम की खूबसूरती भी दिखेगी कि एक कानून जो एक हालात में काम कर रहा होता है, दूसरे हालात में वो कानून बदल सकता है हालात के मुताबिक। चलिए अब यहाँ तक बात हुई, और इस आयत की तफसीर तर्जुमे में ही हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ थोड़े से मुश्किल हैं या उसको समझना थोड़ा सा तवज्जो चाहता है। अब यहाँ तक बात समझ गए, इन अंतुम दरब तुम फिलर्दी, अगर हो तुम सफ़र करते हुए ज़मीन में, यानी जब तुम सफ़र कर रहे थे ज़मीन में, फ़ासाबत को मुसीबतुल मौत, तो पहुँच गई तुमको मौत की मुसीबत, या मुसीबत मौत की मुसीबत से क्या मुराद है, नज़ा की घड़ी, यानी कि जिस वक्त इंसान को ये महसूस होने लगे कि अब मेरे ऊपर मौत की सख्तियाँ शुरू होने वाली हैं, इस वक्त फिर वो क्या करें। तहबिसू नहुमा, अब यहाँ तक बात ख़त्म हो गई, यानी एक तरफ से यहाँ मुसीबतुल मौत तक पहला मंज़र पूरा हुआ। अपने जहन में दोहरा लीजिए, कोई सफ़र में था या किसी दियारे गैर में था, जॉब में हो सकता है, वहाँ सारे इर्द गिर्द नॉन मुस्लिम थे, एकदम हार्ट फेल हुआ, कोई सफ़र में था, जहाज़ में था, वहाँ और कोई अपना नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, अब इंसान के ऊपर मौत का आलम शुरू हुआ, तो पहले तो देखेगा कि मुसलमान कोई उसके पास है कि नहीं, मुसलमान ना मिले तो फिर किसी भी नॉन मुस्लिम को ही गवाह बना दे कि ये मेरी चीज़ें हैं और इनको मेरे घर वालों तक पहुंचा देना। अब यहाँ बात ख़त्म। अब तसव्वुर में आप लाएं, कुरान पाक कहानी को इस तरह नहीं बयान करता कि एक एक लफ्ज़, फिर इसके बाद ये हुआ वो हुआ, अब वो ख़त्म हो गया, वो मर गया, अब ये जो गवाह थे वसी, इनको बोलते हैं अरबी ज़ुबान में, जिन लोगों को के सामने कोई वसीयत की जाए, मिसाल है कि कोई शख्स मरने से पहले कोई बात कहता है तो उस वक़्त वहाँ पास उसका भाई मौजूद था या उसकी बहन मौजूद थी, अब वो वसीयत करने वाला तो मर गया, लेकिन दूसरा जो शख्स है वो उसके बारे में, उस शख्स को हम क्या कहेंगे, वसी, جس کے سامنے وصیت کی گئی، یعنی جو اس موقع پر وصیت جس کے ذمہ لگا دی، جس کو وصیت کا ذمہ دار بنا دیا، اب یہ جا رہے ہیں اس شخص کے گھر والوں کے پاس۔ اب دوسرا سین ہے، تحبسونہما، روک لو ان دونوں کو۔ کن دو کو؟ جن دو کو تم نے ذمہ دار بنایا تھا اس بات کا کہ وہ تمہارا مال یا تمہاری چیزیں تمہارے گھر میں واپس پلٹا دیں، ان کو تم روک لو۔ کب؟ من بعد الصلاتی، نماز کے بعد۔ یہ کس صورت میں ہوگا؟ جب شک پڑ جائے۔ لوگ چیزیں لے کے گئے لیکن گھر والوں کو شک پڑ گیا کہ یہ کچھ کمی بیشی کی جا ہوئی ہوگی، لگتا ہے کہ یہ پوری چیزیں نہیں لے کے آئے، تو پھر کیا کرو؟ نماز کے بعد روک لو۔ اب یہ کون سی نماز ہوگی؟ اس کے بارے میں دو باتیں ہیں۔ عام رائے جو دی جاتی ہے یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز ہو، جو اس معاملے میں جس واقعے کی بنیاد پہ یہ آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، وہاں جب لوگ آئے تھے تو وہ عصر کی نماز تھی، لیکن کوئی بھی نماز کا وقت ہو سکتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ عصر کی نماز اس لیے کہ اس وقت عموماً نمازیوں کا زیادہ اجتماع ہوتا ہے۔ اس دور میں ہوتا ہوگا، آج کا تو مجھے نہیں پتا، مجھے تو لگتا ہے کہ ظہر عصر کی مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ بہرحال یعنی ایسا وقت کہ جہاں زیادہ لوگ ہوں اور ان کے سامنے، دوسروں کے سامنے یہ معاملہ آ جائے۔ اب کیا ہوگا؟ فیق سیمانی بلّاہی، بس وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی۔ یہ دو لوگ ہیں نا، ہر جگہ تثنیہ کے سیگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں قسم کھائیں گے۔ کون؟ جو وصیت کیے گئے تھے، یعنی وصی۔ کیا ہے ان کی قسم کے لفظ؟ انیر تب تم، اگر تم کو شبہ ہو، یعنی تم کون ہے ادھر؟ ورثہ، یعنی اگر وارثوں کو شبہ پڑ جائے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں، تو پھر وہ کہیں گے ان کو کہ تم قسم کھاؤ۔ اس بات پہ قسم کھاؤ کیا؟ کہ لا نشتری بہ ثمنن، کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے مال، ولو کان ذا قربا، اگرچہ ہم میں سے کسی کو قرابت ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لوگ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے کہ ہم جھوٹی قسم نہیں کھا رہے، اگرچہ اس قسم کے بدلے میں ہمیں اپنے کسی قریبی رشتہ دار ہی کی حق تلفی کیوں نہ کرنی پڑے، کسی اور معاملے میں ہو تو ہم، یعنی مراد یہ کہ ہم حق تلفی نہیں کریں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور نہ ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو۔ یہاں دیکھیے اللہ کی گواہی کہا جا رہا ہے، کیونکہ جس نے کہا ہے وہ تو مر گیا نا، تو جب کوئی انسان بیچ میں نہیں رہتا نا، کسی معاملے میں، کسی کمٹمنٹ، کسی ذمہ داری میں، تو وہاں اللہ کی ذات آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپا رہے، اور اگر ہم ایسا کریں، انا اذل لمن العاصمین، تو پھر ہم تو یقیناً گناہ گاروں میں سے ہوں گے، یعنی پھر تو ہم بہت گناہ کریں گے اگر ہم نے قسم چھپائی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جھوٹی قسم کھانا یا گواہی کو چھپانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی کیوں، یہ تو عام بات ہے، کیونکہ شاید ہم نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے کہ لوگ عام طور پہ ایسے کام کرتے ہیں، لیکن جب غور کیا اور جب ہم نے اسلام کا مزاج سمجھا تو پتہ چلا کہ حقوق العباد میں کمی، یعنی انسانی معاملات میں کمی کرنے والا شخص بہت بڑا خائن ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے روپے پیسے کا ضامن بنا دیا گیا ہو یا کسی کے دین کا، اس کی دنیا کا، اس کی ہدایت کا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اللہ کو یہ کبھی بھی پسند نہیں آتا کہ ہمارے کسی رویے سے کسی دوسرے انسان کا نقصان ہو، اس کی جان کا نقصان، اس کے مال کا نقصان، یا اس کی ہدایت کا نقصان ہو۔ ہاں، اب کیا ہوا؟ فائن اسیرا، پھر اگر خبر آ جائے۔ اسیرا کا جو لفظ ہے نا، عین سا را، ہمارے سامنے یہی روٹ ہے اس کا، اچانک خبر آنا۔ ایک ہوتا ہے نبا، نبی سے انبیاء کا لفظ، لیکن اثر اسیرا میں تھوڑا سا فرق کیا ہے؟ کہ یہ اچانک آتی ہے اور بغیر چاہے کسی بات کا معلوم ہو جانا۔ خبریں تو بیٹھتے ہیں نا سننے کے لیے، ارینج کرتے ہیں اختمام کے ساتھ کہ خبروں کا وقت ہوئے ہم سن لیں، لیکن اسیرا اچانک، آپ نے نہیں بھی سوچا تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی بات پتہ چل گئی، تو اس کو اسیرا کہا گیا۔ کیا ہوا؟ خبر آئی کس کی؟ یعنی یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا، بعد میں اس بات کی خبر آئی، کیا؟ کہ انہ مستحق کا اسمن، کہ یہ دونوں تو حق بات کو دبا گئے ہیں، جیسا کہ اس معاملے میں بھی ہوا۔ پہلی دفعہ وہ چیزیں لینے آئے تھے تو لوگوں نے کچھ نہیں ان کو کہا، لیکن جب بعد میں دیکھا، لسٹ دیکھی، اس میں ایک چیز کم تھی، تو اب خبر آ گئی۔ یہ خبر آنا، یعنی پتہ چل گیا کہ بھائی انہوں نے تو حق دبا لیا، इस हक का कलव देखिए, तलब कर लिया हक। इससे पता चलता है कि जब हम किसी का हक नहीं देते ना, तो वो असल में उससे निकलकर हमारी तरफ आ चुका होता है। तो इन्होंने क्या किया, गुनाह। और इस ममूमन वो गुनाह होता है जिसका हकूकुल इबाद से ताल्लुक होता है। तो क्या किया जब इस सूरत में, जब शक हुआ, फ़ाखरान यकूमान मकामहुमा, तो दो दूसरे लोग खड़े होंगे इन दोनों की जगह। किन दोनों की जगह, जिनको वसीयत की गई थी, मिनल्लज़ीन इस्तहक़ अलैहिमुल औलियानी, जिनका हक दबाया गया है जो सबसे ज़्यादा करीब हो मैयत के। यानी अब मैयत जो मरा है उसके घर वालों में से दो लोग खड़े हो जाएंगे और वो अब कहेंगे क्या, फयुक्सिमानि बिल्लाहि लशहादतुना अहक्कु मिन शहादतिहिमा वमा तदैना। अब वो कसम खाएंगे अल्लाह की कि बेशक हमारी कसम या हमारी गवाही ज़्यादा सच्ची है इनकी गवाही से और हमने ज़्यादती नहीं की। इन नज़ल लमिना ज़ालिमीन, और अगर हम ज़्यादती करें तो हम ज़ालिम होंगे। ये बात क्या हुई कि जब घर वालों को शक पड़ा तो घर में से मैयत के करीबी लोगों में से दो लोग आएंगे, फिर वो खड़े होंगे और ये एक किस्म का जरगा होगा ना, पंचायत जैसे बैठती है, तो लोगों के सामने ये मामला होगा कि भाई नहीं, हम भी कसम खाते हैं कि हम इन पर ज़्यादती नहीं कर रहे, वाकई हमारी मैयत के सामान में से फलां चीज़ कम है। और अगर हम झूठ बोल के इन औसिया जो हैं इनको अगर नुकसान दें तो हम ज़ालिम होंगे। इतना इख्तमाम क्यों हो रहा है, क्या हुआ, एक प्याला ही तो था, मर गया, चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं, कोई मरने वाले ने के सामान में से अगर थोड़ा कम भी हो गया तो क्या हुआ, इससे बड़ा भी तो नुकसान हो जाता है ना। नहीं, अल्लाह ऐसे मामलात में बीच का रास्ता नहीं चाहते। कोई बात ही सो के हो गया, कर लिया, नहीं किया किसी ने, नहीं किया, नहीं। ज़ालिकादना अन या तू बिशहादती अला वजहिहा, इससे ये उम्मीद की जाती है कि गवाही को ठीक तरह से दिया जाएगा। यानी अल्लाह ताला कहते हैं इतनी लिखत पढ़त क्यों हो रही है, इतना ज़्यादा इस मामले को संजीदा क्यों लिया जा रहा है, ताकि किसी पे ज़्यादती ना हो। औ यखाफ वइन तुरद्द अईमानुम बइबाद अईमानिहिम, और उनको इस बात का डर हो कि उल्टी पड़ जाएंगी हमारी कस्में इनकी कस्मों के बाद। देखिए, कसम खाना कोई छोटी बात नहीं है। जब कोई बंदा इस तरह का काम करता है कि जिसके नतीजे में झूठी कसम खा लेता है, तो उसको खुदा खौफी होगी कि अगर मैंने झूठी कसम खा ली तो उस कसम का वबाल मुझ पे पड़ेगा। ये है इस्लाम, किस तरीके से इंसानों को उनकी ज़िम्मेदारियां सिखा रहा है, किस तरीके से आगाह कर रहा है कि देखो कि तुम लोगों के हक ना खाओ। एक शख्स जो कोई काम करता है वो उसके बराबर नहीं हो सकता जो नहीं करता। एक देने वाला है एक चीज़ को और एक नहीं देने वाला, दोनों बराबर नहीं होते। देखिए, किसी भी सिस्टम को बिगाड़ने वाले जो लोग होते हैं ना, वो वही होते हैं जो करने और ना करने वालों को बराबर कर देते हैं, और इसको हम जुल्म नहीं समझते, हालांकि ये जुल्म की किस्म है। एक शख्स पैसे लगा के एक चीज़ ख़रीदे और दूसरे को वही चीज़ फ्री मिल जाए, जुल्म किस पे हुआ, जिसने पैसों से वो चीज़ ख़रीदी। तो यहाँ से एक छोटा सा असूल भी हम अपने लिए नोट कर सकते हैं कि जहाँ इंसान इंसानों के साथ मामले करे तो कभी भी इस तरह की रुख्सतें नहीं देनी चाहिए कि तुमने कर लिया तो भी ठीक हो, तुमने नहीं किया तो भी ठीक हो। बस आप देखिए कि हम आप लोगों के पेपर चेक करते हैं ना, टेस्ट देते हैं आप लोग, क्या आप में से कोई ये चाहेगा कि आप पूरा वक्त पढ़ के मेहनत करके पेपर दें फिर आप पूरे नंबर लें, और कोई एक ऐसी स्टूडेंट भी हो वो कुछ लिखें कुछ ना लिखें या अहमियत भी ना दें, लेकिन हम के कोई बात नहीं, लिस्ट में उनका नाम है, चलो हम अपने पास से उनको नंबर दे दें, नहीं पसंद करेंगे ना। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला हम सबको यहाँ ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो, इंसानों के हकूक दबाने से बचो। कल क़्यामत के दिन जो हिसाब किताब होने हैं ना, वो इंसानों के इंसानों से भी होने हैं, गिरोहों के गिरोहों से भी होने हैं, और इंसानों के गिरोहों से भी होने हैं। हम किसी मस्जिद में जाते हैं, खाना सर्व हो रहा था, सब के हिसाब से उन्होंने वहाँ प्लेटें रखी हुई थी, और हमने एक की जगह दो प्लेटें इकट्ठी उठा लीं कि खाना गिरेगा नहीं, ज़रा प्लेट गर्म ना हो, दोहरी ना हो जाए। हमने दूसरों का हक ले लिया। कहीं दावत में गए और आपने देखा कि वहाँ सालन तो बड़े बड़े डोंगों में था, लेकिन चिकन के पीसेस जो थे वो गिने हुए थे या वो हिसाब से थे लोगों के। देखते ही समझ आ जाता है कि लोगों के हिसाब से लोगों ने एक एक रखा होगा, कुछ एक दो चार छः ऊपर रख दिए होंगे, कुछ इससे भी ज़्यादा कर सकता है। अब आप गए लाइन में लगे, आपने कहा मैं क्या खाऊंगा, छोड़ो ये तो सालन तो रोज़ खाती हूँ, मैं तो बस आज सिर्फ रोस्ट खाऊंगी, और आपने अपनी प्लेट में 5-6 बोटियाँ रोस्ट की भर ली। समझ लीजिए कि आपने ज़्यादती की, अपने हक तलफी की, लोगों का हक खा गए। इन सारी चीज़ों पे हम अपने आप को चेक करें। तकवा जो होता है ना, इंसान को बशऊर बनाता है। इंसान का कोई मुहासबा करे ना करे, वो ख़ुद अपना मुहासबा करता है। हासिबू कबलान तो हासबू, ये कैफियत जब आती है ना, फिर इंसान खूबसूरत होता है। फिर वो कैफियत आती है कि जिसमें वो दूसरों के साथ वही मामला करता है जो वो अपने मामले में पसंद करता है। अल्लाह ताला करें, वत्तकुल्ला, डर जो अल्लाह से, इंसानी मामलात में, रुपए पैसे के मामलात में अल्लाह से डर जाओ। वस्माऊ, और सुनो, गौर करो, तवज्जो रखो। वल्लाहु ला यहदी, और अल्लाह ताला नहीं हिदायत देता, अल कौम अल फासिकीन, नाफरमान कौम को। अल्लाह ताला नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता। पता चल गया आज हमें कि अक्सरियत हिदायत से दूर क्यों है, क्योंकि नाफरमान है। कितने एक ज़ाती निजी मामले को अल्लाह ताला सामने लाकर दुनिया की सबसे सच्ची किताब में ये बात पेश कर रहे हैं कि देखो, अगर तुमने इंसानी मामलात को उस तरीके से संजीदा ना लिया जैसे अल्लाह के मामले को अपने लिए लेते हो, तो तुम कभी भी नहीं बचोगे, कभी भी तुम अपने आप को पीछे नहीं करोगे। और इसमें से हम अपने लिए खुद बहुत मुहासबे के नुक्ते लिख सकते हैं कि क्या वाकई मैं हक तलफी तो नहीं करती, क्या वाकई मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करती हूँ, कहीं मैं खुद ही तो किसी को मौका नहीं देती कि कोई मुझ पर ज़ुल्म करे, क्या मेरी ज़िंदगी के अंदर इस तरह की चीज़ें तो नहीं हैं कि मैं किसी भी सिस्टम को बिगाड़ के ऊपर डाल देती हूँ। हमारे मुल्कों में एक अमूमन बात मारूफ है, और वो क्या, अरे छोड़ो कुछ नहीं होता, पहले टैक्स नहीं देंगे और उसके बाद कहेंगे कि वो कर लेंगे वकील, थोड़ी सी उसको रिश्वत देंगे, वो पेपर्स में हमारा नाम दिखा देगा। फिर क्या कहेंगे, अच्छा ये कौन से इन्होंने देना है, ये तो सड़कें तो हमारी टूटी हुई हैं, हम गवर्नमेंट को क्यों पैसे दें। आप देख रहे हैं कि इस वक्त ख़ास तौर पे जो हमारे मुल्कों के मुसलमानों के हालात हैं वो कितने डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। इस आयत में उसकी तरफ भी इशारा मिलता है। कोई कुछ भी करे, पीछे आयत आ गई ना, ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़्ज़तदई, तुम शर्त यह, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, मैं अल्लाह की किताब से रहनुमाई ले रही हूँ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि दूसरे अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे करनी है। दूसरे अपनी कमिटमेंट निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे, आई डोंट केयर, मुझे करनी है। हम सब जिम्मेदारियों के बोझ में बंधे हुए हैं, हम जो वादे करते हैं उनको पूरे करने हैं, जो कमिटमेंट करते हैं उनको निभानी है, और हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि हम कुछ ना करें और हमें उन लोगों के बराबर कर दिया जाए जो करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम सब को नसीहत लेने वाला बना दे, और कुरान पाक का पढ़ना पढ़ाना ये हमारी अमली ज़िंदगी में दिखने लगे, और हम वाकई इन चीज़ों को लेकर अपने आप को ऐसे खूबसूरत इंसान बनाएं कि जहाँ से हम गुज़रें लोग कहें कि वाकई ये मुस्लिम है, यानी हम इनसे सलामत हैं, लोगों के माल हमसे सलामत हो जाएं। ये मानी और आराफ के एतबार से मुश्किल तरीन आयत है कुरान पाक की, इसलिए सारी बात को दोहरा देती हूँ दो चार लफ्ज़ों में। जब कोई शख्स हालत सफ़र में है या किसी ऐसी जगह पर जहाँ उसके इर्द गिर्द नॉन मुस्लिम है, अचानक मौत का मामला शुरू हो गया, नज़ा की सख्तियाँ और इस तरह की कैफियत हुई, अब इतना वक्त नहीं है कि अपनी चीज़ों को वापस करें, किसको दें, तो जो लोग पास मौजूद हैं उनमें से जो भी सही लगे, यहाँ शर्त है ज़वादलन मिनकुम की, लेकिन शर्त से मुराद ये है कि जो भी मुमकिन तरीके, अगर कोई ना भी बहुत अच्छा मिले, कोई ख़राब इंसान है तो उसको भी दे दें, उसके ऊपर एतमाद करें, क्योंकि आप तो दुनिया से जा ही रहे हैं, तो ऐसे अनअटेंडेड चीज़ें छोड़ जाने से बेहतर है कि आप किसी को भी उन चीज़ों को हैंड ओवर करें, वो लोग जाके वो चीज़ें घर वालों को दे दें, ये मामला ख़त्म हो गया। ये तो आम बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि घर वालों को शक पड़ता है कि सामान में से इसने कुछ चुरा लिया है, तो उस सूरत में क्या किया जाएगा, उन लोगों को जो गवाह बन के आए थे रोक लिया जाएगा, नमाज का कोई वक्त, जब लोगों की कोई सोशल गैदरिंग हो, कोई भी मौका हो सकता है, उन सबको जमा करके बुलाया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि तुम कसम खा के बताओ कि तुमने मैयत के माल में से कुछ नहीं छुपाया। लोग सोच रहे होंगे, लो एक तो वो उनकी चीज़ें लेके आए हैं, एक बार से आप उनसे ऐसी बातें पूछ रहे हैं। जी पूछ रहे हैं, इसलिए कि आज दुनिया में अगर ना भी पता चलेगा कि किसने किसका माल दबा लिया, किसको नहीं दिया, उसके ज़िम्मे था अदा करना और उसने अदा नहीं किया, तो कल क़यामत के दिन तो पता चलेगा। तो उस वक़्त इंसान अफसोस करेगा कि अल्लाह ताला एक दफ़ा हमें दुनिया में वापस भेज दे और हम जाके वहाँ वही अदा कर रहे हैं जो हमारे ज़िम्मे वाजिबुल अदा थी। वहाँ तो नेकियों की सूरत में देनी पड़ेगी या गुनाह लेने पड़ेंगे। तो बहरहाल फिर ये दोनों आके कसम खाएंगे कि हमने ऐसा काम नहीं किया। अब ये पीछे हो जाएंगे। फिर मैयत के घर वालों में से जिनका वो वरसा था उनको दो को लाया जाएगा, वो आके कसम खाएंगे। नहीं, हम कसम खा के कह सकते हैं कि हमारी मैयत के माल में से कुछ कम है और हम इन पे ज्यादती नहीं कर रहे, और सबूत में वो दिखा सकते हैं, कोई लिस्ट, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई पेपर। तो फिर इसके बाद दोनों का होगा। इस मामले में ऐसे ही हुआ था, जब ये प्याले का मामला हुआ तो उसके बाद जब उन दो लोगों ने कसमें खाई, फिर उसके बाद घर वालों ने आके कसम खाई कि नहीं, हमें उसी के हाथ की लिखी हुई एक लिस्ट में मिल गया, फिर लिहाजा ऐसे ही हुआ। उन्होंने कुछ दिन के बाद वो प्याला एक सुनार के पास से मिला, सुनार से पूछा। ये मामला खुला भी ऐसे ही था कि जब वो सुनार के पास एक प्याला निकला, उससे पूछा तुम्हें ये कहाँ से मिला। तमीम और अदी नाम के जो दो शख्स हैं उनसे हमने ख़रीदा 1000 कितने का दिरहम का। फिर जब ये सारा मामला ख़त्म हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लम ने फिर उन तमीम और अदी से 1000 लेकर तो उन मैयत के वर्सा को दिए, जो उसके फिर वर्से की सूरत में बट गया।